लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अत्याचार और उत्पीड़न निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यातनाओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध रहे और पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता की गारंटी प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
मेरी फ्रेटेली सोरेल्ले, बेनवेनुति, बोनजोर्नो, सोनो क्वी दावांती अ नोई ले रेलिक्विए दी सांता तेरेसा दी जेसू बंबीनो, पत्रोना यूनिवर्सले देले मिशनी।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, स्वागत और सुप्रभात। यहाँ हमारे बीच में बालक यीशु की संत तेरेसा के अवशेष हैं, जो वैश्विक प्रेरिताई की संरक्षिका संत है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक उत्साह पर चिंतन कर रहे हैं। आइए हम बालक यीशु की संत तेरेसा के जीवन पर चिंतन करते हुए उनसे सहायता की मांग करें। उनका जन्म आज से 150 साल पहले हुआ था और उनकी सालगिरह के अवसर पर मैं एक प्रेरितिक पत्र जारी करने की सोच रहा हूँ। वे प्रेरिताई की संरक्षिका हैं, लेकिन वे प्रेरिताई हेतु कभी नहीं भेजी गईं। वे कार्मेल धर्म समाज में एक धर्म बहन थीं और उनका जीवन अपने में अल्प और दुर्बलताओं से भरा था। वह अपने को धूल का छोटा कण कहा करती थीं। कमजोर स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु मात्र 24 वर्ष की आयु में हो गई। संत पापा ने कहा, यद्यपि उनका शरीर कमजोर था, उनका हृदय उत्साह और प्रेरितिक जोश से भरा था। वे अपनी डायरी में लिखती हैं कि प्रेरिताई हेतु जाने की उनकी घोर इच्छा थी। वह कुछ सालों के लिए नहीं अपितु जीवन भर इसके लिए अपने को समर्पित करना चाहती थी, वास्तव में दुनिया के अंत तक। तेरेसा प्रेरिताई में संलग्न कई एक के लिए आध्यात्मिक बहन की तरह थीं। मठ से ही वह अपने पत्रों के माध्यम त्याग और तपस्या द्वारा बहुतों को अपना सहचर्य प्रदान करती थी। दृश्यहीन वह प्रेरिताई के लिए प्रार्थनाएं करती थीं। उसी भांति जैसे गुप्त इंजन वाहन को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, लेकिन वह अपने धर्म बहनों के द्वारा नहीं समझी गयी, जिन्होंने उसे गुलाबों की अपेक्षा और अधिक कांटों से भर दिया। लेकिन उसने सारी चीजों को प्रेम से स्वीकार किया, धैर्य में अपने विरुद्ध की गई टीका टिप्पणी और नासमझी को उसने बीमारी के साथ ईश्वर को अर्पित कर दिया। कलिसा की जरूरतों के लिए उन्होंने ऐसा खुशी पूर्वक किया, जैसा कि वे कहती हैं, गुलाब सबों को मिले, विशेष रूप से जो अति दूर हैं। संत पापा ने कहा,
tutto questo zelo, tutta questa forza missionaria, questa gioia di intercedere, da dove arrivano?
कि यह उत्साह, यह प्रेरितिक शक्ति और प्रार्थना में खुशी उसे कहां से प्राप्त हुई? उसके जीवन की दो घटनाएं जो मठ में प्रवेश करने के पहले उसके साथ घटीं, जो हमें इसे समझने में मदद करती हैं। पहली घटना 1886 में ख्रीस्त जयंती को हुई, जब ईश्वर ने उसके हृदय में एक चमत्कार किए। उस घटना के थोड़े दिन बाद तेरेसा 14 साल की हो गई। एक छोटी बच्ची के रूप में वह अपने घर में सबकी दुलारी थी। जागरण मिस्सा से लौटने के बाद उनके पिता अधिक थकान के कारण बेटी के उपहार को खोलने में मदद करने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने कहा, शुक्र है यह साल का अंतिम समय है। तेरेसा, जो अपने स्वभाव में अति संवेदनशील थी, इस बात से चोटिल अनुभव करती है और रो पड़ती है। वह अपने कमरे में जाकर रोती है, लेकिन वह तुरंत ही अपने आंसुओं को दबा लेती है। वह सीढ़ी से नीचे जाती और खुशी से अपने पिता को उत्साहित करती है। उस रात को क्या हुआ था जब यीशु अपने को प्रेम में कमजोर पाते हैं? वहाँ एक चमत्कार होता है। वह अपनी आत्मा के लिए शक्ति प्राप्त करती है। कुछ ही क्षणों में वह अपने स्वार्थ और आत्म तरस की स्थिति से बाहर निकलती है। वह अपने में अनुभव करती है कि करुणा का प्रवेश उसके हृदय में हुआ है, जहाँ वह अपनी जरूरत को भूल जाती है। तब से वह अपने उत्साह को दूसरों के लिए अभिमुख करती, जिससे वे ईश्वर को प्राप्त कर सकें, और अपने लिए सांत्वना पाने के बदले वह यीशु को सांत्वना देती, आत्माओं के द्वारा उन्हें प्रेम दिखलाती, क्योंकि संत तेरेसा ने अनुभव किया,
यीशु è malato d'amore. La malattia dell'amore non si guarisce che con l'amore.
यीशु प्रेम में बीमार हैं, और इस प्रेम रूपी बीमारी का इलाज केवल प्रेम से हो सकता है। इस भांति हम उनके रोज दिन के लक्ष्य को देखते हैं, यीशु को प्रेम करने में मदद करना दूसरों के लिए प्रार्थना द्वारा। वे लिखती हैं, मैं आत्माओं को बचाना चाहती हूँ और उनके लिए अपने को भूलना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपने मृत्यु के उपरांत भी बचाना चाहती हूँ। उन्होंने कई बार यह लिखा, अपने स्वर्ग को पृथ्वी पर दूसरों की भलाई में व्यय करना चाहती हूँ। यह पहली घटना थी जो 14 वर्ष की आयु में हुई, जिसके द्वारा उसका जीवन बदल गया। संत पापा ने कहा, उसका उत्साह विशेष रूप से पापियों के लिए उन्मुख था, वे जो बहुत दूर हो गए थे। यह दूसरी घटना में व्यक्त होती है। तेरेसा को एक अपराधी एनरिको प्राजीनी के बारे में पता चला, जिसे कुख्यात अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे 3 लोगों की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। वह विश्वास के द्वारा सांत्वना पाने की कोई चाह नहीं रखता था। तेरेसा उसे अपने हृदय में वहन करती और उन सारी चीजों को उसके लिए करती जिसे वह कर सकती थी। वह उसके मन परिवर्तन हेतु जहाँ तक बन पड़े प्रार्थना करती थी। वह भ्रातृत्व में करुणा में उसे बेचारा दुखी प्राजिनी कहकर पुकारती और ईश्वरीय करुणा की प्राप्ति हेतु उसके लिए विनय करती थी, जिस पर तेरेसा का अटूट विश्वास था। सजा का दिन आया। दूसरे दिन तेरेसा ने अखबार में प्राजिनी के बारे में पढ़ा कि मौत से पहले अचानक किसी बात से प्रेरित वह क्रूस की ओर मुड़ा, जिसे एक पुरोहित उसे दिया करते थे। उसे कसकर पकड़कर उसने यीशु के पवित्र घावों का 3 बार चुंबन किया। संत तेरेसा कहती है, तब उसकी आत्मा को करुणा की वह सजा मिली जिसकी घोषणा यीशु करते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं, स्वर्ग में एक पश्चातापी के लिए अधिक आनंद मनाया जाएगा जो पश्चाताप करता है। संत पापा ने कहा,
fratelli, sorelli, ecco la forza dell'intercessione.
कि हम करुणा से प्रेरित निवेदन प्रार्थना की शक्ति को देख सकते हैं। यहाँ हम प्रेरिताई के इंजन को देखते हैं। वास्तव में संत तेरेसा जो प्रेरिताई की संरक्षिका है, न केवल उनकी जो दूर यात्रा करते हैं, नई भाषाएं सीखते, अच्छे कार्य करते और सुंदर सुसमाचार की घोषणा करते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेरित कोई भी हो सकता है जो किसी भी स्थान में रहते हुए ईश्वरीय प्रेम का साधन बनता है। ये वे लोग हैं जो सारी चीजों को करते हैं अपने साक्ष्य के माध्यम, प्रार्थना और निवेदन में, जिससे यीशु निकट आ सके। यह प्रेरितिक उत्साह है जिसे हम सदैव याद रखें, जो कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराता या कभी दबाव नहीं डालता, बल्कि आकर्षित करता है। संत पापा ने कहा, कोई किसी के दबाव में आकर ख्रिस्तीय नहीं बनता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह प्रेम से प्रभावित है। कलीसिया में हम बहुत सारी चीजों, माध्यमों, रचनाओं को पाते हैं जो कई जरूरी बातों से हमें दूर ले जाती है। कलीसिया को आज संत तेरेसा के हृदय की जरूरत है, वह हृदय जो प्रेम में दूसरों को आकर्षित करता और उन्हें ईश्वर के निकट लाता है। हम संत तेरेसा से प्रार्थना करें कि वे हमें अपने स्वार्थ पर विजयी होने को मदद करें और हमें उत्साह से भर दें, जिससे हम यीशु ख्रिस्त को प्रसारित करते हुए उन्हें प्रेम कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस का जमेली विश्वविद्यालय अस्पताल में आज दोपहर को लेप्रोटोमी और पेट की दीवार पर शल्य चिकित्सा होगा। बुधवार की सुबह आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा फ्रांसिस को रोम के ए जमेली विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोपहर में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि संत पापा का लेप्रोटोमी और पेट की दीवार का ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन हाल के दिनों में संत पापा की सहायता करने वाली चिकित्सा टीम द्वारा आयोजित किया गया। यह एक अव्यवस्थित आकस्मिक हर्निया के कारण आवश्यक हो गया है, जो आवर्ती दर्दनाक और बिगड़ती उप अवरोधक सिंड्रोम का कारण बन रहा है। सामान्य पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स और पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए संत पापा को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। और संत पापा फ्रांसिस ने विश्वव्यापी शांति हेतु एक मिनट पहल के लिए अपील की और संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों से आग्रह किया कि वे दुनिया को तबाह करने वाले युद्धों के अंत के लिए प्रार्थना में शामिल हों, विशेष रूप से यूक्रेन में। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वव्यापी शांति हेतु एक मिनट पहल की सराहना की है, विश्वासियों से अपील की है कि वे दुनिया को विशेष रूप से यूक्रेन में युद्धों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना में शामिल होवें। यूक्रेन में एक वर्ष से अधिक समय से युद्ध जारी है, इसने अनगिनत लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। बुधवारी आम दर्शन समारोह के समापन पर संत पापा फ्रांसिस ने पोलिश तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए यूक्रेन और इसकी पीड़ित आबादी को याद किया और इतालवी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए उन्होंने शांति हेतु एक मिनट पहल पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा, कल दोपहर एक बजे अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक एक्शन का सुझाव है कि विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के विश्वासी शांति हेतु एक मिनट समर्पित करते हुए प्रार्थना में इकट्ठा होवें। संत पापा ने कहा, आइए हम इस निमंत्रण को स्वीकार करें। दुनिया में युद्धों के अंत और विशेष रूप से प्रिय और पीड़ित यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें। कैथोलिक एक्शन का अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुनिया भर के विश्वासियों से आह्वान है कि गुरुवार 8 जून को रोम के समय अनुसार दोपहर एक बजे हर कोई रुके, अपना सिर झुकाएं और अपनी परंपरा के अनुसार शांति के लिए प्रार्थना करें। IFCA ने 8 जून 2014 को संत पापा फ्रांसिस द्वारा बुलाई गई अभूतपूर्व शांति के लिए प्रार्थना सभा को मनाने के लिए इस विशिष्ट तिथि को चुना,
जिसमें इसराइल के राष्ट्रपति और फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने पवित्र भूमि में शांति हेतु एक साथ प्रार्थना करने के लिए वाटिकन में मुलाकात की थी। और अपने साप्ताहिक आम दर्शन में संत पापा फ्रांसिस ने बालक येसु की, संत तेरेसा और उनके छोटे तरीके की प्रशंसा की, जिन्होंने बीमारी और जल्दी मृत्यु के बावजूद असाधारण प्रेम के साथ छोटी से छोटी चीजों को करने का उदाहरण दिया। इसी के मद्देनजर संत पापा ने ट्वीट कर सभी ख्रिस्तियों को येसु को प्रेम करने के लिए बालक येसु की संत तेरेसा का अनुकरण करने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, बालक येसु की संत तेरेसा मिशन की संरक्षिका के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि उन्होंने येसु को जिस तरह से प्रेम किया उसी तरह हम येसु को प्रेम कर सकें। हम अपनी परीक्षाओं और दुखों को येसु को चढ़ा सकें जैसा कि उसने किया था, ताकि येसु सभी के द्वारा जाना और प्यार किया जा सके। उधर यूक्रेन में संत पापा फ्रांसिस के विशेष शांति दूत ने युद्धग्रस्त राष्ट्र के लिए अपने दो दिवसीय मिशन का समापन किया। इटली के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी ने नागरिक और धार्मिक अधिकारियों के साथ बैठकों के एक गहन कार्यक्रम के बाद मंगलवार को अपना मिशन का समापन किया। और 24 फरवरी 2022 से रूसी आक्रमण शुरू हुए 15 महीनों के युद्ध से तबाह हुए देश में प्रार्थना और चिंतन के लिए समर्पित समय दिया। मंगलवार की सुबह कार्डिनल जुप्पी ने कीव में संत सोफिया महागिरजाघर का दौरा कर प्रार्थना में समय बिताया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति वलादिमीर जेलेंस्की और अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंगलवार 6 जून की शाम को मिशन के समापन पर वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि इन वार्ताओं के परिणाम, जैसे कि धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ साथ यूक्रेनी लोगों की अत्याचारपूर्ण पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव एवं चल रहे युद्ध के परिणाम को संत पापा के ध्यान में लाया जाएगा। मिशन निसंदेह मानवतावादी स्तर पर उठाए जाने वाले अगले कदम का आकलन करने और एक न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति के रास्तों की खोज के लिए उपयोगी होगा। मार्च 2022 में राजधानी से वापसी के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा मारे गए दर्जनों नागरिकों की कब्रों के सामने प्रार्थना करते हुए सुबह को बुचा शहर की यात्रा कार्डिनल जुप्पी के लिए एक गहन भावुक क्षण था। उनमें से कई को यातना दी गई थी और सामूहिक कब्रों में दफनाया गया। सोमवार को कलीसियाओं की परिषद और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कार्डिनल जुप्पी की एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ऐतिहासिक अन्याय और प्रणालीगत पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को अधिक लचीला, न्यायसंगत और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार का आग्रह किया। सोमवार 5 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बोलते हुए महासचिव ने व्यक्त किया कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय वैश्विक सुरक्षा जाल के रूप में अपने मूल जनादेश को पूरा करने में काफी हद तक विफल रही है। महासचिव गुटेरेस के अनुसार, विकासशील देशों को वसूली का समर्थन करने के लिए प्रणाली ने पर्याप्त वित्त पोषण प्रदान नहीं किया, जिनमें से कई अब गहरे वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।